मित्रगण नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार रेडियो मधुबन के श्रव्य मंच पर। और हम अपना आज का पाठ आरंभ करेंगे शिव महिम्न स्तोत्र के 2 या 3 श्लोकों के साथ। आओ देखते हैं कि कवि पुष्पदंत आगे शिव जी के बारे में क्या क्या लिख रहा है। कवि आगे वर्णन करता है, रथः क्षौणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथचरण पाणि शर इति दिधक्षोस्ते कोयम् त्रिपुर तृणमाडंबर विधिर्विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्राः प्रभुधियः। इसका क्या अर्थ हुआ? तो यहाँ पर कवि ने त्रिपुर बनाने वाले 3 राक्षस और शिव जी ने किस प्रकार उन तीनों त्रिपुरों का संहार किया, यह कहानी कवि ने मन में रखी है और उसी पर आधारित यह श्लोक उसने रचा है कि ये जो 3 त्रिपुर बने थे, जो ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से राक्षसों ने बनाए थे, वे तीनों ही तुम्हारे लिए तृण के समान ही थे, अर्थात घास के तिनके की तरह थे। और उसको नष्ट करने के लिए जब तुम निकले तो रथः क्षौणी, क्षौणी अर्थात पृथ्वी, तो पृथ्वी तुम्हारे लिए रथ बन गई। और शतधृति अर्थात ब्रह्मदेव स्वयं तुम्हारे लिए यंता अर्थात सारथी बन गए। और अगेंद्र अर्थात जो पर्वतों का राजा मेरु पर्वत, वह तुम्हारे लिए धनुष बन गया। और चंद्रार्कौ, चंद्र और अर्क अर्थात सूर्य, तो चंद्र और सूर्य ये दोनों तुम्हारे रथ के 2 पहिए बन गए। और रथ चरण पाणी ही अर्थात विष्णु, यह तुम्हारे लिए बाण बन गया, शराह अर्थात बाण। तो इस प्रकार पूरी तैयारी तुमने की। तो कवि कहता है कि ये पूरा आडंबर रचने की तुम्हें क्या आवश्यकता थी, ये सारा तुम नाटक ही तो कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारे लिए तो वे त्रिपुर एक तिनके के समान थे। तो ये आडंबर तुमने इसलिए किया कि ये तुम्हारे लिए क्रीड़ा थी और तुम खेलना चाह रहे थे, क्योंकि तुम जितनी प्रभुता रखते हो, प्रभु धिया अर्थात बुद्धि, तो तुम्हारी बुद्धि की जैसी प्रभुता है, उस प्रभुता के कारण तुम परतंत्र या परावलंबी तो हो ही नहीं सकते। तो फिर तुम्हें इस प्रकार से विष्णु और ब्रह्मा और मेरु पर्वत और पृथ्वी, इन सारे लोगों की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन तुम बस खेल रचा रहे थे, इसलिए तुमने इन सबों को अपना सहायक बनाया और उनके माध्यम से तुमने त्रिपुरों का नाश किया। तो मित्रों, देखा कि यहाँ कवि ने विष्णु का वर्णन बड़े ही अलग ढंग से किया है। विष्णु को हम चक्रपाणी कहते हैं, चक्रपाणी अर्थात जिसने हाथ में चक्र उठा के रखा है। अब उसी चक्र के लिए यहाँ कवि ने रथचरण शब्द का उपयोग किया है। रथचरण अर्थात रथ का पहिया, जो कि चक्र ही होता है, और उसको हाथ में रखने वाला विष्णु, यह बहुव्रीही समास हो गया विष्णु के लिए। लेकिन इस पूरे श्लोक में रथ शब्द का प्रयोग बार बार करके कवि ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। उसने पहले कहा कि रथः क्षौणी अर्थात पृथ्वी तुम्हारे लिए रथ है, फिर एक संधि बनी है धनुः और अथो, इन 2 शब्दों में धनुः का अर्थ हुआ धनुष, अथो अर्थात और, लेकिन इस प्रकार जो संधि बनी धनुरथो, उसमें एक गेयता, एक सौंदर्य आ गया। फिर रथांगे चंद्रार्कौ अर्थात रथ के पहियों में चंद्र और सूर्य, इस प्रकार वर्णन करते हुए फिर से रथ शब्द का प्रयोग किया। और विष्णु के लिए तो कमाल का शब्द लिख दिया, रथ चरण पाणी। तो इस प्रकार प्रतिभाशाली यह कवि है, ये हम बार बार देख चुके हैं। तो देखते हैं कि अगले श्लोक में कवि किस प्रकार अपनी प्रतिभा का उपयोग करता है। हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोर यदे कोने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। तो मित्रों, यहाँ पर कवि ने एक और भी सुंदर कहानी का आधार लिया है और इस श्लोक की रचना की है। वह कहानी इस प्रकार कवि कहता है कि हरि ही ते साहस्त्रम कमल बलिम आधाय इच्छति। हरि ने अर्थात विष्णु ने तुम्हारे प्रति, तुम्हारे चरणों में, पदयो हो, तुम्हारे चरणों में एक सहस्र कमल के फूल चढ़ाने का निश्चय किया, इच्छा की। और यद एको ने, अर्थात जब उसमें एक कमल का फूल कम पड़ गया तो विष्णु ने क्या किया, निजम उदहरण नेत्र कमलम, अपनी आँख, जिसका वर्णन नेत्र कमल किया जाता है, तो विष्णु ने अपनी आँख को ही उदहरण अर्थात शरीर से बाहर निकाला और तुम्हारे चरणों में कमल के समान अर्पित किया। तो इस प्रकार अतिशय उच्च स्तर की भक्ति को देख करके तुमने इस भक्ति को ही चक्र के रूप में बदल दिया और वही सुदर्शन चक्र सदा के लिए विष्णु के हाथ में रहने लगा। और वह चक्र क्या करता है, तो त्रयाणाम जगताम रक्षायई जागृति, तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए वह चक्र सदैव सावधान रहता है, सदैव जागृत रहता है, जगा हुआ रहता है। और इस प्रकार विष्णु का चक्र तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए सदैव जागृत रहता है। तो मित्रों, आगे एक श्लोक और देख लेते हैं। अगले श्लोक में कवि कहता है, कृतौ सुप्ते जागृत त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्म सुजनः। यहाँ कवि ने फिर से उस घटना का आधार लिया है जिसमें शिवजी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। और यह विध्वंस इसलिए किया था कि प्रजापति के यज्ञ में उन्हीं की पुत्री सती, जो कि शिव की पत्नी थी, उसने शिव का अपमान होता देख अपने शरीर से अग्नि प्रकट करके उस अग्नि में अपने आप को जला लिया था। इस घटना से दुखी होकर के शिवजी ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। लेकिन फिर सभी देवताओं ने और दक्ष ने, सब ने मिलकर के शिव से प्रार्थना की कि यज्ञ का विधान सदा चलता रहे, इसके लिए आप कुछ करिए। तो तब से यह माना जाता है कि यज्ञ और यज्ञ का फल, दोनों के बीच में जो माध्यम है, दोनों के बीच में जो कड़ी है, वह कड़ी शिव जी है। तब से यह माना जाने लगा कि यज्ञ का जो दृश्य फल होता है उसके सिवा कोई अदृश्य या सुप्त फल भी होता है और वह फल देने वाले शिव हैं, ऐसी मान्यता है। इसी घटना का उपयोग कवि ने यहाँ अपने श्लोक के लिए किया है। कवि कहता है, क्रतौ सुप्ते जागृत त्वमसि फलयोगे क्रतुमताम, अर्थात क्रतुमताम क्रतौ सुप्ते फलयोगे त्वं जागृत असि। क्रतुमताम अर्थात यज्ञ करने वालों का और क्रतौ अर्थात यज्ञ, सुप्ते फलयोगे त्वं जागृत असि, उसका कोई अप्रकट या सुप्त फल देने के लिए तुम सदा जागृत रहते हो, अर्थात अवश्य ही तुम यज्ञ का कोई सुप्त फल देते रहते हो। क्व कर्म पुरुष आराधनम रुते फलति, तो पुरुषाराधनम रुते, यहाँ भी संधि है पुरुषाराधनम रुते, और रुते का अर्थ हुआ विना, तो पुरुषाराधनम विना अर्थात हे ईश्वर, हे महादेव, तुम्हारी आराधना के बिना कौन सा कर्म फल दे सकता है। अतस्त्वाम संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम्। अतः लोगों ने यह देख लिया कि तुम्हारे ही कारण यज्ञों का फल मिलता है, तो श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढ़ परिकरः कर्मसु जनः। श्रुतौ अर्थात वेदों में जो कहा गया है उसके प्रति दृढ़ श्रद्धा रखते हुए लोग यज्ञ करते चलते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि तुम इस यज्ञ का फल अवश्य देते हो। तो यहाँ कवि ने इस घटना का वर्णन किया है कि यज्ञों में शिव की क्या प्रतिष्ठा है, जो प्रतिष्ठा प्रजापति दक्ष ने नहीं समझी और उसे ठुकराने का प्रयत्न किया, तो उस यज्ञ में सती ने स्वयं की आहुति दे दी। और यह आहुति इसलिए दी थी कि सती को लगा कि उसका पिता दक्ष उसके पति के अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा और स्वयं शिव भी अपना अधिकार जताने के लिए नहीं आ रहे, तो शिव को किस प्रकार आवाहन किया जाए, इस विचार से सती ने स्वयं को अग्नि निर्माण करके भस्मसात किया था। और इस घटना से प्रक्षुब्ध होकर शिव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। और तब से यह तय पाया गया कि शिव के अधिकार को समझा जाए, और तब से यह मान्यता चली आ रही है कि यज्ञ का जो सुप्त फल है, अप्रकट फल है, वह शिव ही देते हैं। और तब से लोगों ने फिर से श्रुति में बताए हुए तरीकों से यज्ञ का आचरण पुनः आरंभ किया। तो मित्रों, कवि की प्रतिभा को नमन करते हुए हम आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करेंगे। तुम पढ़ते रहो संस्कृत, समझते रहो शिव महिमन स्त्रोत्र को, हो सके तो इसका पाठ भी सीख लो, और सुनते रहो रेडियो मधुबन भी। मुस्कुराते रहो। नमस्कार।